Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vidya Tapo Moolam. Jo Atma hai, wo kaisi hai? विद्या और तपो मूला है, यानी मूल विद्या और तप चाहिए, तभी वह प्रकट होगा। सर्वव्यापी नम आत्मानम, आत्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो इस समय भी तुम्हारे पास है कि नहीं है? सर्वव्यापी है तो सब जगह है, जैसे घी सर्वव्यापक नहीं है, दही में सर्वव्यापक है, दधि इतर में घी नहीं है, काष्ठ में अग्नि सर्वव्यापक है, दधि इतर काष्ठ इतर में अग्नि नहीं है। तो अरणि मंथन करोगे तभी अग्नि प्रकट, दधि मंथन करोगे तभी घी प्रकट, पानी मंथन से घी प्रकट नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? पानी मंथन से घी प्रकट नहीं होगा। लेकिन सर्वव्यापी नम आत्मा नम क्षीरे सर्पिरिवावृता, वो आत्मा सभी में व्यापक है, जैसे दही में घी की तरह। तब फिर सभी में व्यापक है तो सभी का मंथन कर लो, तो किसी का भी मंथन करके ब्रह्म को प्रकट कर लो। लकड़ी में ब्रह्म है कि नहीं है? क्षीरे सर्पिरिवावृत, तो दूध में घी की तरह लकड़ी में ब्रह्म है कि नहीं? दूध में घी है, इसी तरह लकड़ी में ब्रह्म है कि नहीं है? तो फिर लकड़ी मंथन कर लो तो ब्रह्म प्रकट होगा कि नहीं? हां, ब्रह्म मंथन करके, लकड़ी मंथन करके ब्रह्म प्रकट नहीं होगा। हां, ब्रह्म प्रकट हो सकता है वहां सब, लेकिन अरणि मंथन से नहीं, नाम रूप के बाद से। अस्थिभाति प्रिय के रूप में तो है ही है ना, तो फिर वहां मंथन क्या करना है? अस्थिभाति प्रियंचैव नाम रूपम च पंचमम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम माया रूपम ततो द्वयम्। नाम रूप माया का रूप है, अस्थिभाति प्रिय ब्रह्म का रूप है। तब फिर यतो यतो मनोयाति तत्र तत्रैव ब्रह्म भावयेत्, यद्यत् पक्षति चक्षुर्भ्यम तत्तद् आत्मेति भावयेत्। इस तरह ब्रह्म दर्शन लकड़ी में तो कर ही सकते हो ना, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। नाम और रूप माया रूप है करके उसका बात करना पड़ेगा, तभी अस्थिभाति प्रिय तो प्रकट हो ही जाएगा। तो आप कहीं भी प्रकट हो, लेकिन उससे पहले तुम अपने हृदय में प्रकट करोगे तो सभी जगह प्रकट हो पाएगा, हृदय में प्रकट नहीं होगा तो सभी जगह प्रकट नहीं हो पाएगा। तो सर्वव्यापिना आत्मानं क्षीरे सर्पेरिव आवृतम आत्मविद्या तपो मूलम तद् ब्रह्मोपनिषद पर। वो जो ब्रह्मोपनिषद है, उपनिषद ब्रह्म, उपनिषद प्रतिपादित जो ब्रह्म है वो कैसा है? वो आत्मा विद्या और तपो मूल है। विद्या और तप का प्रयोग करोगे तभी वो प्रकट होगा, और विद्या और तप का प्रयोग किए बिना वो प्रकट नहीं होगा। विद्या और तप के प्रयोग से सर्वव्यापी आत्मा सब जगह प्रकट हो जाएगा। भाष्य देख लो, ये सामान्य अर्थ हो गया इसका। सर्वव्यापीनम इति सर्वम प्रकृत्यादि विशेषांतः। सर्व शब्द का अर्थ प्रकृति आदि से लेकर विशेष अंत, विशेष अंत माने विशेष को क्या कहोगे, ये नाम रूप प्रकट हुए हुए व्यक्त हुए हुए विशेष यानी विराट, विराट स्थूल इसको विशेष कहते हैं। प्रकृति महतत्व पंचतन्मात्रा और पंचीकरण और पंचमहाभूत और उसके कार्य, ये क्या हो गया विशेष। प्रकृति में भी वह है, महातत्व में भी वह है, व्यष्टि बुद्धि में भी वह है, समष्टि बुद्धि में भी वह है, अपंचीकृत में भी है, पंचीकृत में भी है, पंचीकृत का तमाम कार्य में भी वह है। सर्वव्यापी न, क्योंकि सर्वम शब्द का अर्थ प्रकृति से लेकर व्यक्त स्थूल पदार्थ पर्यंत, इसको लेकर सर्व कहा। और वो अधिष्ठान ब्रह्म सर्वव्यापी है, सभी में समान रूप से रहता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य में ज्यादा रहता है और पशुओं में कम रहता है, ऐसा नहीं। हाथी में वो आत्मा ज्यादा रहता है और चींटी में कम रहता है, ऐसा नहीं है। चींटी में आत्मा कम है, है? चींटी में मांस कम है, हाथी में मांस ज्यादा है। हाथी में क्या ज्यादा है, आत्मा ज्यादा है कि मांस ज्यादा है? और चींटी में क्या कम है, आत्मा कम है कि मांस कम है? आप कल्पना करो, हाथी की जितनी मांस है उतने बराबर मांस चींटी के शरीरों से निकालना हो तो कितने चींटी चाहिए है? हैं? अब करो गणित, खोजो चींटियां। लेकिन हाथी में जितनी आत्मा है उतनी आत्मा पूरा करने के लिए कितनी चींटी चाहिए बोलो? एक ही चींटी पर्याप्त है। हाथी में जितनी मांस है उतने मांस पूरा करने के लिए कितनी चींटी चाहिए? और हाथी में जितनी आत्मा है उतनी आत्मा के लिए कितनी चींटी चाहिए? एक ही चींटी पर्याप्त। इसीलिए आत्मा कहीं कमी और कहीं ज्यादा का तो प्रश्न ही नहीं है, है? प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण में जो आत्मा है उतनी आत्मा के लिए पूरा करने के लिए शूद्रों में कितनी अशूद्रों की जरूरत पड़ेगी? एक ही शूद्र ब्राह्मण के आत्मा के बराबर हो जाएगा है? क्या बात करते हो, एक ही शूद्र की आत्मा ब्राह्मण के आत्मा के बराबर हो जाएगा? अच्छा भाई, ब्राह्मण के शरीर में जितनी मांस है उतनी बराबर करने के लिए कितनी शूद्रों का मांस चाहिए? क्या बात करते हो, फिर क्या भेद रह गया? खाली बुद्धि का भेद है, खाली बुद्धि का भेद है, और कोई भेद तो नहीं है ना? सर्वव्यापी नम का अर्थ कर रहा हूं, कोई अन्यथा नहीं लेना। फिर तो ये महात्मा तो खतरनाक है, बावन और ब्राह्मण और शूद्र को एक ही बता रहा है, ये अन्यथा नहीं, ये वेदांत है। तुम्हारा धर्म अपनी जगह है, ब्राह्मण और शूद्र में भिन्न भिन्नता देखने की दृष्टि ज्ञान चक्षु की नहीं है, धर्म चक्षु की है। परसों शाम को हमने प्रवचन किया था ना धर्म चक्षु की बात, ये शूद्र अलग है ब्राह्मण अलग है, ये दृष्टि ज्ञान चक्षु का नहीं, ये धर्म चक्षु का है। ये भेद तो धर्म चक्षु का है, ज्ञान चक्षु का नहीं। और चींटी अलग है हाथी अलग है, ये चर्म चक्षु का है, ये धर्म चक्षु का भी विषय नहीं है, ज्ञान चक्षु का भी विषय नहीं है। ज्ञान चक्षु का विषय तो सभी एक ही है, हमने उस दिन कही दिया था, ज्ञान चक्षु से एक ही वस्तु दिखता है, एक के अलावा दूसरा दिखेगा नहीं। सर्वम प्रकृति आदि विशेषांतम व्याप्य अवस्थितम न देहे इंद्रियाद्य अध्यात्म मात्रा अवस्थितम। तुम्हारी ये भ्रांति हटा दो, देह और इंद्रियों में ही वह आत्मा अवस्थित है, यदि तुम मानते हो तो ये भ्रांति है, इसको हटा देना। जहां देह और इंद्रियां नहीं है, पत्थरों में भी जड़ में भी वह समान रूप से अवस्थितम, वह सर्वव्यापी आत्मा देह इंद्रियों में जितनी मात्रा में वह ब्रह्म है, पत्थर पहाड़ में भी उतनी ही मात्रा में वह ब्रह्म है। हां, अंतर यह, पत्थर पहाड़ों में आभास चिदाभास नहीं है और देह इंद्रियों में चिदाभास है। अब चिदाभास को तो सर्वव्यापी आत्मा माना ही नहीं गया है। हाँ, चिदाभास को तो सर्वव्यापी माना ही नहीं है ना, चिदाभास सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता है। वो तो जितनी माने उपाधि में प्रतिबिंबित हुआ है उतना ही है, क्योंकि वो चिदाभास तो उपाधि के, उपाधि जितना बड़ा है उतना ही चिदाभास है। और क्योंकि चिदाभास वही है जहां अंतकरण उपाधि है, क्योंकि पत्थर आदि में अंतकरण नहीं है इसलिए चिदाभास नहीं है, शरीर आदि में अंतकरण है इसलिए चिदाभास है। ये यहां आत्मा है यहां नहीं है, ये परिभाषा तो चिदाभास को लेकर हुई है, आत्मा को लेकर नहीं है, ध्यान रख लेना ये बात। ये बात यहां कह रहे हैं, कहीं कोई ये नहीं समझ जाए कि देह और इंद्रिय में ही आत्मा है और जगह नहीं है, तो वो खंडन कर दिया भाष्यकार ने, ये भ्रांति तुम्हारी हट जानी चाहिए। व्याप्यावस्थितम न देह इंद्रिया अध्यात्म मात्र अवस्थितम, केवल अध्यात्म में मात्र वो रहता है ऐसा नहीं, अधिभूत में भी रहता है, अधिदैव में भी रहता है, अधिभूत में भी उतने रूप में है जो जितने अधिदैव में है, अधिभूत अधिदैव में उतने रूप में जितना अध्यात्म में, अध्यात्म में जितना उतने अधिभूत अधिदैव में है, वो किसी उपाधि में ज्यादा और किसी उपाधि में कम वो औपनिषद ब्रह्म नहीं है। औपनिषद ब्रह्म किसी उपाधि में ज्यादा किसी उपाधि में कम ऐसा नहीं, अधिदैव में ज्यादा अधिभूत में कम, अधिदैव में ज्यादा अध्यात्म में थोड़ा कम, अधिभूत में बिल्कुल कम, औपनिषद ब्रह्म में ये भेद नहीं होगा। फिर ये भूत किस में होगा? चिदाभास में। ये भेद होगा चिदाभास, अधिदैव में ज्यादा स्पष्ट है, अध्यात्म में उससे थोड़ा कम स्पष्ट है, अधिभूत में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। चिदाभास अधिभूत में तो है ही नहीं, अंतकरण नहीं है। चिदाभास के फर्क को लेकर औपनिषद ब्रह्म के भेद नहीं मान लेना भाई, ये अलग चीज है, चिदाभास अलग चीज है, औपनिषद ब्रह्म अलग चीज है। जिस यहां तद ब्रह्मोपनिषदम कह दिया है, अब आप समझे नहीं समझे भगवान जाने, हमने समझा है और समझाया है, हम समझ चुके हैं और जो हम समझ चुके हैं वही आपको समझा रहे हैं, और आप समझे नहीं समझे भगवान जाने, समझ जाओ तो कल्याण, नहीं तो दाल रोटी जिंदाबाद। बोले नहीं समझेंगे उपनिषद ब्रह्म को, नहीं समझेंगे तो दाल भात में कोई तकलीफ होगी? दाल भात जिंदाबाद, और क्या है। तदात्मा तम आत्मानम, उस आत्मा को कैसे बोले, छीरे सर्पिरिव सारत्तेन, छीरे सर्पिरिव, छीर माने दूध, दूध में विद्यमान जो घी है, पहले दही में कहा था अब दही का भी कारण छीर कह दिया। अब दूध में यदि घी है तो घास में घी है कि नहीं बोलो, घास में घी नहीं है? यदि घास में घी नहीं होती तो दूध में भी घी न होता, और घी में दूध में घी न हो तो दही में नहीं हो सके, तो घास में भी घी है, है ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए हम बचपन में पहाड़ में थे ना, तो वहां डालडा शब्द प्रयोग नहीं करते थे, वो घास की घी कहते थे वो लोग, वनस्पति लिखा ही देता है ना बाहर, वनस्पति घी करके लिखा था पहले, शुद्ध वनस्पति घी लिखा रहता था। तो गाय के घी के वो वनस्पति घी नहीं लिखते थे, और डालडा को अभी भी शायद डालडा के डब्बों में मुझे लगता है अभी भी लिखा जाता है वनस्पति घी। हाँ, अब हम वनस्पति का अर्थ क्या किया, घास, तो हम गांव में यही चलता था घास का घी, हमारे दिमाग में न बैठे कि घास में कैसे घी होता है। अब देख लो घी है, वो घास गाय खाएगी, उसके बाद दूध बनेगा, उसके बाद दही बनेगा, उसके बाद घी आएगा। यदि घास में ही घी न होता तो कहां से होता, बोलो। कारण रूप में तो सब जगह रहेगा ना, ना सतो विद्यते भाव, गीता का श्लोक है। अभाव जहां एक कोई वस्तु किसी जगह एक बार भी उसको अभाव सिद्ध करोगे, एक बार कहीं भी उसका अभाव सिद्ध करोगे तो वह कभी भी भाव रूप हो ही नहीं सकता है, अभाव कभी भी भाव रूप नहीं होता है। और एक बार जहां जिसका भाव सिद्ध किया वो उसका फिर अभाव कभी सिद्ध नहीं कर सकते हो। घास में तुमने घी का अभाव सिद्ध कर दिया तो फिर दूध में भी उसका अभाव सिद्ध करना पड़ेगा, दही में भी अभाव सिद्ध करना पड़ेगा, कटोरी में भी अभाव ही सिद्ध होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भाव है, तभी वो अन्यत्र भाव है। अभाव तो कभी भी भाव हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब पानी में भी भाव है, चेरे सर्पिरी वसारत्वेन निरंतरतयात्मत्वेन सर्वेषु अर्पितम आत्मविद्या तपो मूलम, सभी में वो पहले से विद्यमान जो औपनिषद आत्मा है, ब्रह्म है, वह आत्मविद्या तपो मूलम, विद्या और तपो मूल है वो आत्मा। कारणम ये श्रूयते च एष एव साधु कर्म कारयति, कौशिक की उपनिषद, वही सबको सुंदर कर्म यानी शुभ कर्म कराता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, स्मृति गीता, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा वह मुझे प्राप्त करता है। तो बुद्धि योग को ही विद्या कहा, तपोमूलम विद्यामूलम औपनिषदम ब्रह्म, अथवा आत्मविद्या च तपश्च यस्य आत्मलाभे मूलम हेतुरिति आत्मविद्या मूलम, आत्मलाभ में, आत्मा के अपरोक्ष होने में मूल में विद्या और तप चाहिए। विद्या और तप के द्वारा ही वह आत्मा का उपलब्धि अपरोक्ष होगा, विद्या और तप नहीं होगा तो उपलब्धि नहीं होगी। तो सर्वव्यापी आत्मा को अपरोक्ष करने के लिए मूल विद्या और तप है। तो विद्या मूल का दो अर्थ किया, आत्मा मूल का दो अर्थ किया, एक का अर्थ किया आत्मा सभी का मूल है, समझ गए ना, आत्मा सभी का मूल है इसलिए आत्मा मूल कहा, और विद्या और तप उस आत्मा उपलब्धि के लिए मुख्य साधन है इसलिए उसको विद्या और मूल को तप को मूल कहा। इधर आत्मा को मूल कहा, उधर विद्या और तप को मूल कहा, ये बात श्रुति ने कहा स्वयं, तथा च श्रुति विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होने के कारण अमृतत्व विद्या मूल हो गया। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तैतिरी उपनिषद, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो, इति च ब्रह्म उपनिषद परम उपनिषन उपनिषन्नम अस्मिन् परम श्रेय इति। उपनिषन्नम उपनिषद माने औपनिषद ब्रह्म, या उपनिषण अण का यानी उपनिषद आश्रित ब्रह्म, तो यानी ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपनिषद का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म उपनिषद आश्रित है और से ब्रह्म अपरोक्ष नहीं होगा, उपनिषद से ही ब्रह्म अपरोक्ष होगा। इसीलिए गीता में, गीता के अध्याय में भी कह दिया है, वेदश्च सर्वैरहमेव विद्यम, हे अर्जुन समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाने वाला हूं। वेदैरेव अहम् वेद्य, और वेद से ही उपनिषद से ही हम मैं जाना जाने वाला हूं, अन्यों से नहीं। इसलिए उपनिषन्नम अस्मिन् श्रेय इति यः सत्यादि साधन संयुक्त स एनम सर्वव्यापिन आत्मानम, सत्य आदि साधन से युक्त हुआ हुआ व्यक्ति ही, सत्य तप आदि से युक्त हुआ हुआ व्यक्ति ही, मुमुक्षु ही उस औपनिषद ब्रह्म को अपरोक्ष कर सकता है। कैसे? जैसे क्षीरे सर्पिरिव, क्षीर में दूध में से दही में से घी को ग्रहण करता है कौन? मंथन करने की क्षमता वाला व्यक्ति ही। आत्मविद्या तपो मूलम तद ब्रह्मोपनिषद परम अनुपस्यति, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को प्राप्त करता है, अनुपस्यति अनुभव करता है। सर्वगतम ब्रह्मात्म दर्शिनम आत्मन्नेव गृह्यते, सर्वव्यापी उस आत्मा को आत्मा द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। आत्मा अंतकरण अखंडाकार वृत्ति, सर्वगतम ब्रह्मात्म दर्शिनम आत्मत्वेन आत्मन्नेव गृह्यते, इसी शरीर में इसी अंतकरण में वो सर्वव्यापी आत्मा को ग्रहण करता है। नासत्यादि युक्तेन, असत्यादि अतपस्यादि साधनों से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, सत्य और तपस्या से ही उसको प्राप्त करना चाहिए, किया जा सकता है। परिच्छिन्न ब्रह्मान ब्रह्मा अन्नमयाद्य आत्मना, क्योंकि अचिन्न है ये, सूर्यते च सत्येन लभ्यस्तपसा ये सयात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं नते सुजिह्मम् अमृतं न माया च इति। प्रश्नोपनिषद के साधन बता दिया, इसलिए द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्ति अर्थम, श्रुति में जो दो बार तद ब्रह्मोपनिषद परम तद ब्रह्मोपनिषद परम ये आया, इसका क्या अर्थ है महाराज? बोले पहला अध्याय समाप्त हो गया, ये बताने के लिए द्विरावृत्ति है, कल से अब दूसरा अध्याय शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।